ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 8 सितंबर 2019 के लिए है। विषय आदमी स्वर्णपथ ग्रंथियों। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। उत्तरदायी ध्यान भजन संहिता। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूधपियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक सके। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी शुद्धि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वादा विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वो हीम के नियन उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों, तो भी वो ऊन के समान सफ़ेद हो जाएंगे। यशाया। ऐ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाखा मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वास्तव नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वचा। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करे, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। लूका। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो उस नगर की पापनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में अतर लाई, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगाने और अपने सर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बराबर चूम कर उन पर अतर मला। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्य अद्विक्ता होता तो जान लेता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापनी है। ये सुनकर यीशु ने उसे उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक मोहब्बत रखेगा? शमाउन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमाउन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पांव का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर अतर मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वो अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल चली जा। यूहन्ना। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन दयाधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इफिसियों। परंतु भगवान ने, जो दया का धानी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसे हमने कहा कि प्रेम है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। रोमियो। सो अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापामय शरीर की समानता में और पाप का बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तीतस। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रगत है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें जिताता है कि हम भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धाम और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रगत होने की बात जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधाम से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। करंथियों। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर सभी अस्तित्व का दिव्य सिद्धांत है और आदमी उसका विचार है, उसकी देखभाल का बच्चा। पवित्र शास्त्र हमें सूचित करता है कि मनुष्य परमेश्वर की छवि और समानता में बना है। वो ईश्वर का यौगिक विचार है जिसमें सभी सही विचार शामिल हैं। वो भगवान की छवि और समानता को दर्शाता है सभी के लिए सामान्य शब्द। पिता माता देवता का नाम है जो उनकी आध्यात्मिक रचनाओं के कोमल संबंधों को इंगित करता है। भगवान प्यार है, इससे अधिक हम पहुंच नहीं सकते, ऊंचा हम देख नहीं सकते और आगे हम जा नहीं सकते। मसीही युग के पहले और बाद में सभी पीढ़ियों के दौरान आध्यात्मिक विचार के रूप में मसीह भगवान का प्रतिबिंब शक्ति और अनुग्रह के कुछ उपाय के साथ आया जो सभी मसीह सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। ईश्वरी और विज्ञानित रूप से यीशु के जीवन ने साबित कर दिया कि ईश्वर प्रेम है। प्रेम का डिजाइन पापी को सुधारना है। कृपया का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। यीशु ने शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मा की असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार मानव भावना को अपने स्वयं के दोषन से भागने में मदद करने और दिव्य विज्ञान में सुरक्षा की तलाश करने के लिए। ये लूका के सुसमाचार के सातवें अध्याय से संबंधित है कि यीशु एक बार एक फरीसी का सम्मानित अतिथि बना जिसका नाम शमाउन था। हालांकि वो शमाउन शीशे के बिल्कुल विपरीत था। जब वो भोजन पर थे तो एक असामान्य घटना हुई जैसा कि पूरे अस्तित्व का दृश्य बाधित होता है। एक अनजान महिला अंदर आई। वो एक संगमरमर का जार पकड़े हुए थी जिसमें महंगा और सुगंधित तेल था, शायद चंदन का तेल, जो पूर्व में इस तरह के आम उपयोग में है। बंद जार को खोलकर उसने यीशु के पैर तेल से सुगंधित किए, उसके लंबे बालों के साथ उन्हें पोंछते हुए जो उसके कंधों पर खुले लटक रहे थे, जैसा कि उसकी उम्र की महिलाओं के साथ प्रथागत था। क्या यीशु ने महिला को अपमान के साथ देखा था? क्या उसने अपने इरादे को ठुकरा दिया था? नहीं, उसने उसे करुणापूर्ण माना और ऐसा कुछ नहीं था। ये जानकर कि उसके आसपास के लोग उनके दिल में क्या कहते हैं, खासकर उसका मेज़बान, वो सोच रहे थे कि नबी होने के नाते अति विशेष अतिथि ने एक बार महिला की अनेकित स्थिति का पता नहीं लगाया और उसे विदा नहीं किया। ये जानकर कि यीशु ने उन्हें एक छोटी कहानी या दृष्टांत के साथ फुटकार लगाई। उसने दो देनदारों का वर्णन किया, एक बड़ी राशि के लिए और एक छोटी के लिए, जिन्हें उनके सामने लेनदार द्वारा अदायित्वों से मुक्त किया गया था। उनमें से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? यह शमौन फरीसी के लिए मास्टर का प्रश्न था और शमौन ने उत्तर दिया, वो जिसे उसने अधिक माफ कर दिया। यीशु ने जवाब स्वीकार किया और इसलिए सभी को सबक सिखाया, जिसके बाद महिला के लिए ये औलेखानी घोषणा के साथ, तेरे पाप क्षमा हुए। इस प्रकार उसने अपने कर्ज को दिव्य प्रेम के लिए क्यों क्षमा कर दिया? निश्चित रूप से इस तथ्य में प्रोत्साहन था कि वो निस्संदेह सच्चाई और पवित्रता के व्यक्ति के लिए अपना स्नेह दिखा रही थी, जो तब से सबसे अच्छा आदमी माना जाता है जो कभी इस ग्रह पर था। उसकी श्रद्धा शुद्ध थी और ये उस व्यक्ति के प्रति प्राकट हुआ जो जल्द ही, हालांकि वो ये जानते नहीं थे, उसके वचन और कार्यों के माध्यम से उन्हें का मुक्ता और पाप से मुक्त करने वाला था। क्या क्रिश्चियन विज्ञानों ने सत्य की तलाश की क्योंकि शमाउन ने उद्धारकर्ता की मांग भावतिक रोधीवाद के माध्यम से और व्यक्तिगत श्रद्धा अंजलि के लिए की थी? यीशु ने शमाउन को बताया कि ऐसा साधकों को, जिन्होंने मसीहा के माध्यम से आए आध्यात्मिक शुद्धिकरण के बदले में छोटे इनाम दिए। यदि क्रिश्चियन वैज्ञानिक शमाउन की तरह हैं तो उनके बारे में ये भी कहा जाना चाहिए कि वो बहुत कम प्यार करते हैं। दूसरी ओर, क्या वो सत्य या मसीह के लिए अपना संबंध दिखाते हैं? उनके असली पश्चाताप से, उनके टूटे दिलों द्वारा नम्रता और मानवीय संयुक्ता करके, जैसा कि इस महिला ने किया, यदि ऐसा है तो ये उनके बारे में कहा जा सकता है जैसा कि यीशु ने बिन बुलाए मेहमान के बारे में कहा कि वो वास्तव में बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कुछ माफ कर दिया गया है। अनुग्रह और सत्य अन्य सभी साधनों और विधियों से अधिक शक्तिशाली हैं। यदि वैज्ञानिक दिव्य प्रेम के माध्यम से अपने रोगी तक पहुंचता है, चिकित्सा कार्य एक यात्रा में पूरा किया जाएगा और रोग सुबह की धूप से पहले की औस की तरह अपने मूल शून्यता में गायब हो जाएगा। यदि वैज्ञानिक को अपने स्वयं की क्षमा को जीतने के लिए पर्याप्त मसीही स्नेह है और एक प्रशंसा है, जैसा कि मगदलीनी ने यीशु से प्राप्त किया, तब वो वैज्ञानिक रूप से अभ्यास करने और अपने रोगियों के साथ दया से पेश आने के लिए मसीही है, और परिणाम आध्यात्मिक इरादे के अनुसार होगा। आत्मा निंदा और अपराध की एक मानसिक स्थिति या सच्चाई में एक लड़खड़ाहट और संदेह पर भरोसा करना बीमार को ठीक करने के लिए अनुपातिक परिस्थितियां हैं। मसीही मानसिक अवस्थाएं ताकत की बजाय कमजोरी का संकेत देती हैं। ये भावतिक मानसिकता गलत दिमाग नश्वर है, इसलिए मनुष्य का सर्वनाश होगा। क्या यह आध्यात्मिक वास्तविक मनुष्य के अपने ईश्वर के साथ अवेकी संबंध के लिए नहीं था जिसे यीशु प्रकाश में लाया था? जब यीशु ने परमेश्वर के बच्चों की बात की, ना कि पुरुषों के बच्चों की बात की, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका मतलब है सत्य और प्रेम वास्तव मनुष्य में राज्य करता है। ये दर्शाता है कि भगवान की छवि में आदमी बेदाग और शाश्वत है। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया जो इसे दिखाई दिया, जहाँ पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता ने परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा, और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण ने बीमारों को उपचार दिया। इस प्रकार यीशु ने सिखाया कि ईश्वर का राज्य अक्षण है और मनुष्य शुद्ध और पवित्र है। हमेशा अच्छा रहने की आदत का संघर्ष एक दैनिक प्रार्थना है। इसका मकसद उनके द्वारा लाई गई आशीर्वादों में प्रकट होना है। वो आशीर्वाद जो भले ही श्राव्य शब्दों में स्वीकार नहीं किया जाता, हमारी योग्यता को प्यार का भागीदार बनाते हैं। जब हम यीशु को मानते हैं और जो कुछ उसने नश्वर के लिए किया उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अपने प्यार के रास्ते को केवल महिमा के सिंहासन तक फैलाकर हमारे लिए रास्ता तलाश करने की व्यर्थ पीड़ा में फिर भी यीशु ने हमें व्यक्तिगत अनुभव नहीं दिया। अगर हम उसकी आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करें और सभी ने अपने प्रेम के प्रदर्शन के अनुपात में पीने के लिए दुखड़ प्रयास किए, जब तक सभी दिव्य प्रेम के माध्यम से मुक्त नहीं हो जाते। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।